मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
की।
हम सभी लोग पिछले दिनों से बंधने वाले कर्म, भोगे जाने वाले कर्म और किए जाने वाले कर्मों में हमारी कितनी हिस्सेदारी है, इस पर विचार कर। बांधे जाने वाले कर्म कोई और हमारे लिए बांधता हो, हमारे भाग्य को निर्धारित करता हो, ऐसा नहीं है। किए जाने वाले कर्म हमारे लिए कोई और कर दे, ऐसा भी नहीं है। जो कार्य मैं करता हूं उसका कर्ता मैं स्वयं हूं, और जो कर्म मैं भोगता हूं वो किसी और ने मेरे लिए किए हो, ऐसा नहीं है। मैंने ही किए हैं इसलिए मैं उनको भोग रहा हूं। इस तरह निरंतर हम कर्म करते हैं, कर्म का फल भोगते हैं और नए नए कर्म बांधते रहते हैं। इन कर्मों के बांधने में हमने समझा है कि कर्म बंध की प्रक्रिया के प्रति हमारा जो अज्ञान है वो भी एक कारण है, हमारा अपना मोह एक दूसरा कारण है, और तीसरा कारण है हमारी अपनी पुरुषार्थहीनता। ये तीन कारण हैं जिनकी वजह से कि हमें कर्म निरंतर बंधते रहते हैं। कोई अगर अपने मोह को कम करना चाहे तो पुरुषार्थ के द्वारा अपने मोह को कम कर सकता है। कोई अपने कर्म बंध के अज्ञान को दूर करना चाहे तो गुरुजनों के निकट बैठ करके, जिनवाणी माँ के चरणों में बैठ करके, अपने थोड़े से ज्ञान के माध्यम से भी कर्मबंध की प्रक्रिया के बारे में जो अज्ञान है उसे दूर कर सकता है। और रही बात पुरुषार्थहीनता की, सो पुरुषार्थहीनता तो स्वयं ही दूर करना पड़ेगी, पुरुषार्थवान बनना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि हम पुरुषार्थ नहीं करते, भैया हम बहुत कर्मठ हैं, संसार के काम करने में बहुत कर्मठ हैं, कर्मों के काटने में जरूर हम पुरुषार्थहीन हैं, बांधने में तो हम बहुत मजबूत हैं, हमेशा बांधते ही रहते हैं। हमसे ज्यादा कर्मठ कौन होगा कर्म को बांधने में? भगवान भी पीछे हैं हमसे, बेकौ कर्म नहीं बांध पाते, और अपन 148 में से 120 तो एक संगे बन सकस स्वपन पूरे बांध ले। तो देखो अपनी कर्मठता कितनी है अगर देखा जाए। तो कर्म बांधने की कर्मठता की चर्चा नहीं है। कर्मठ तो वो है जो जितने ज्यादा अपने बांधे हुए कर्मों को काट सके और कम से कम कर्म बांधे, ये पुरुषार्थ है। सो हमारी पुरुषार्थहीनता की वजह से कर्म बंधते हैं। और अगर हम, और वो पुरुषार्थहीनता कैसी, कर्म काटने की पुरुषार्थहीनता, संसार के काम करने में तो बहुत पुरुषार्थ है, वो नहीं समझना। ये नहीं समझना कि जो हाथ पे हाथ धरे हैं वो व्यक्ति पुरुषार्थहीन है, ऐसे कर्म बांध रहे हो। अपन तो सब दुनिया को काम कर रहे, सो अपन थोड़ी बांध रहे। मुझे लगा कि इसका अर्थ ऐसा ना समझ लिया जाए। एक दिन प्रश्न भी आ गया था कि महाराज, कर्म के तीव्र हृदय में पुरुषार्थ तो काम करता नहीं, और उल्टा जैसा कर्म प्रेरित करता है सो वैसा ही करना पड़ता है। सो भैया, ऐसा तो 5% कर्मों के लिए है, 95% कर्मों के लिए ऐसा नहीं है। को समय ने आत्मा ने कर्म दावे छे, लेकिन को समय ने तो कर्म ने आत्मा दावे। सो 95% अवसर में तो आत्मा ही कर्मों को दबाने में सक्षम है, अकेले 5% कर्म है जो निधत्ति और निकाचित प्रकार के हम बांध लेते हैं, उनका फल भोगने की हमारी मजबूरी है। और भावी कछु मजबूरी नहीं है, जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन करने मात्र से निधत्ति निकाचित कर्म भी अपने स्वभाव को छोड़ देते। अब लेकिन हम इतना ही पुरुषार्थ न करें कि मंदिर तक आवे, जिनेन्द्र भगवान को दर्शन करें, तो भैया कोनो में सो कर्म नहीं है, जो उनको उदय आए और वो तुम्हें पकड़ के मंदिर लुआ ले आए। कौन अभी तक कोनू कर्म ऐसो नहीं बने हो, कौन तो बता दे। कर्म सिद्धांत परिवारों कि जो कर्म जब उदय में आउत है तब के बाद अपन मंदिर आ पाऊ नहीं। साता के उदय में तो मंदिर आएंगे, लेकिन साता के उदय में मंदिर ही आवे ऐसा जरूरी नहीं है। साता के उदय में दुकान पे सो जा सकत, ग्राहक की चला सकत बढ़िया आराम से। साता को उदय उदय भी है, नौ के बिना चले ने दुकान। सो साता के उदय में मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, किस दिशा में मुझे अपने उस साता का फल भोगना है, ये मेरे पुरुषार्थ पे निर्भर। इसलिए मैं बार बार पुरुषार्थ की बात कह रहा हूं। ये तो जिंदगी लद गई हमारी ये कहते कहते कि क्या करें, हमारे कर्मों को उदय है, सुने हमारी कछु इच्छा होता है ने हमसे करो जाता है। अब आप ही बताओ महाराज, लिखी है शास्त्रों में कि कर्म के तीव्र उदय में कुछ नहीं सूझता है, उल्टा सुलटा पुरुषार्थ होता है कर्म के तीव्र हृदय में, वो बस नहीं चलता। सो हम मानते हैं, हम कहां कह रहे कि नहीं है, लेकिन 5% है, 95% तो हमारे हाथ में है। और उन 5% को काटने का उपाय भी बताया है कि इतना पुरुषार्थ तो हर जीव कर सकता कि जिनबिंब के दर्शन करने तो आओ, लेकिन अगर हम इतना भी पुरुषार्थ ना करें और अपने कर्मों का उदय मान करके और बैठ जावे तो ये हमारी पुरुषार्थहीनता ही कहलाएगी। मुझे इस पुरुषार्थहीनता की बात कहनी है। दुनिया भर का ज्ञान हासिल कर लें, लेकिन कैसे कर्म बंधते हैं, कैसे काटे जाते हैं, कैसे भोगे जाते हैं, जो विज्ञान ने पढ़े अपन तो का काम को सबरो ज्ञान, ऐसी कैसी अज्ञानता है। खूब ज्ञानवान लोग हैं लेकिन कर्म कैसे बंध जाते हैं जी नहीं मालूम। कर्म बंध जा सो भोगें कैसे बंधे हुए कर्मों को। अबे तो कई अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को कर्म भोगने की प्रक्रिया नहीं मालूम कि कैसे भोगे जा। शांति से भोगे जात के रोकें भोगे जात के हंसकें भोगे जात, बताओ। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति गाली गलौज करता पाया जाता है, अपने परिवार के साथ में दुर्व्यवहार करता पाया जाता है, और डिग्री तो बहुत बड़ी लाए तो बताओ, ये जो ज्ञान है वो ज्ञान समीचीन है या जो एक बुद्धू है कछु नहीं जानत। मनो जब कर्म को उदय आते तो शांत रहते कि भैया अब एक पाप को उदय है, शांत रहो, यही में सार है। उसका ज्ञान चोखा है कि इनका ज्ञान चोखा है। तो कर्म के बंध के बारे में हमारा ज्ञान तब समीचीन कहलाएगा जब हम कर्म का फल भोगते समय शांति रखें, तो समझना हमारा ज्ञान मजबूत है। जब कोई 4 बातें कह ले और हम एक भी न कहें तो समझना कि ज्ञानी हो। और चार की चालीस सुनाई तो हमसे ज्यादा अज्ञानी कोई नहीं हो। कर्मबंध के बारे में अज्ञानी कहलाएगा वो जो चार के उल्टे में चालीस जवाब देता है और जो चार के एवज में कुछ नहीं कहता। कहते कोई बात नहीं, मेरे कर्म का उदय है सो आपने इतनी बातें कह ली, अब नौ हिसाब काहे को चालू करें और आपसे कह के सुबह पुराण चुकता होगा। धन्यवाद, जय जिनेन्द्र करी के ये कह ली तुमने और चार और कह ली रह गई हो तो मनवांगे नहीं बनाऊंगे हमें। अब अगर इतना हमारे मन में ये सीखने की चीज है, जितने भी संसार के घात प्रतिघात हैं उनमें अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करना, जितना हो सके प्रतिक्रिया कम करना और जितने जल्दी हो सके समायोजन कर लेना, एडजस्टमेंट कर लेना, चाहे विचारों का हो चाहे वस्तुओं का हो, तो वही व्यक्ति कर्म बंध की प्रक्रिया को समझने वाला कहलाएगा। जो जितने जल्दी एडजस्ट कर लेता है अपोजिट कंडीशंस में भी, जो अपने को बिल्कुल अनफेवरेबल कंडीशन है, प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, उनमें भी वो अपने को जल्दी से एडजस्ट कर लेता है कि ठीक है ज्यादा देर मत करो किसी भी तरह से, उसमें क्या बेहतर हो सकता, चार चीजें मिली हैं अब यही पे रोक, जी चार काय मिली ये को काम की नहीं है, नहीं उन चार में से कैसे काम निकालो जा सका, सुन निकाल लो और आगे बढ़ो। ऐसा एडजस्ट करके जो चल सकता है वो समझना कि कर्म बंध से बच भी सकता है, कर्म के फल को ठीक से भोग करके आगे कर्म के बंध से बच सकता है। इस तरह से हमने पिछले दिनों अलग अलग ढंग से इस चीज को समझा है और आखिरी में हम इसी निर्णय पे पहुंचे हैं कि अपने परिणाम हम संभाल लेवें तो जिस सारी बातें ने भी समझ में आवे तो समझ में आ गई, समझ लो हमारे परिणाम हमारे हाथ में, और कछु हमारे हाथ में नहीं है, परिणाम तो हमारे हाथ में। जब कर्मोदय में आएंगे सुबह हमें क्रोध ही करवा क्रोध दिला सकते हैं, लेकिन हम क्रोध करें जो हमारे हाथ में है, कर्मो न करवो हमारे हाथ में। कर्म को काम है कि वो हमें बहुत तीव्रता से गुस्सा करवावे, लेकिन हम करें या न करें, को हमें गाली दे सकत, हम नाराज हुए न हुए, जो तो हमारे हाथ में है। जा बताओ तुम गाली दे हो और हम लिख के दाएं देत के ये प्रकार की और अच्छी अच्छी है जे दे, हाँ जी लिख लो तो मोर दो, हमें गुस्सा ही नहीं होने, हमें जब गुस्सा ही नहीं होने तो तुम अपनी चाय कितना हुआ अच्छी चौकी गाड़ी धरे रहो, अच्छी अच्छी किस्म की ले आओ, चाहे जितनी अपशब्द कहो। ये गणित इस तरह अपन को विचार करना चाहिए कि मेरे हाथ में है। जैसे साता के उदय में सामग्री भली प्रकार की मिल सकती है, लेकिन वो सामग्री मुझे सुख देवे ये जरूरी नहीं है, वो सामग्री मुझे दुख का कारण भी बन जाती है। मेरी जितनी आसक्ति होगी, मेरा जितना मोह होगा वर्तमान का, उस अनुसार ही कर्म मुझे फल देगा, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव के अनुसार कर्म अपना फल देता, उसमें प्रमुखता भाव की है। रसगुल्ला खा रहे बहुत दिन के बाद तो बनवाए थे जैसे तैसे और अब हाथ में लिए ही हैं, उत्ते में फोन की घंटी बजी सो फोन जल्दी से लगाओ और बड़े आराम आदो तो बड़े आनंद से खाओ है, उतने में फोन आ गओ कि जो ना आपको वो मकान आपने लो तो सो की रजिस्ट्री कैंसिल हो गई, अब वो दूसरे के जिम में चलो गो, या कि जो ना आपने लो तो सो में आगी लग गई, अब खाओ वो रसगुल्ला कैसो लग रहा। अब वो रसगुल्ला जो साता के उदय में मिली थी सामग्री साता नहीं दे पाएगी, अब वो रसगुल्ला ऐसा लग रहा कि कहां फेंक देवे और ये कितनी विपत्ति का कारण वर्तमान। और अगर हमारा मुंह न हो गए उस मकान से जो जल गया है या जिसकी रजिस्ट्री कैंसिल हो गई है, जो हमारे हाथ से चला गया उससे मुंह न हो गए, तो हमारा ये साता जो है हमें सुख दे सकता है, वरना साता भी हमें सुख नहीं दे सकता। एक दिन अपन ने इसकी चर्चा करी थी कि पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, सो पुण्य के उदय से रसगुल्ला सामने रखो है, पंखा चलाओ जा रहा है, बढ़िया चीजें सब कह रहे हैं और उत्ते में वो फोन आ गया, ना ही सदा सुख साता। आपको सुख मिलेगी, साता मिलेगी, साता के उदय में ऐसा कोई नियम नहीं है, अनुकूल सामग्री मिल सकती है, लेकिन उससे आप अगर अपना सुख भोगना चाहो तो सुख और दुख भोगना चाहो तो दुख, वही सामग्री दुख का कारण बन सकती, वही सामग्री सुख का, मिली आपके साता के उदय से, साता के उदय से कोट मिली, जाकट मिली, मफलर मिलो, गलूबंद का कहाऊ और जो कछु कहने हुए, इतनी चीजें मिली, सब सब पहलो बिल्कुल ठंड लग रही सवेरे से जा रहे शिखर जी की यात्रा पर, वो तो फिर खोल लौटो सो फिर बई सामग्री दुख का कारण कहां धर देवे, अब इतनो तो पसीना पसीना हो गए। सुबेरे तो कह रहे थे कि बहुत अच्छो माओ गलूबंद है, देखो हाथ पोस पहरे, जाकट पहरे, कोट पहरे, वही सामग्री जो साता के उदय में मिली थी। मेरे कहने का आशय ये है कि मेरे अपने परिणामों की संभाल मेरे हाथ में है और बाकी चीजें भले ही मेरे कर्मों के हाथ में हों लेकिन मेरे परिणामों की संभाल मेरे हाथ। बस ये जरा सी बात और हम सबके समझ में आ जावे कैसे परिणाम से हम साता बांधते और कैसे परिणाम से असाता बांधते, इसके दो सूत्रों पर आज अपन थोड़ा सा विचार करें। दो सूत्र दिए, दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद वेद्यस्य और भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। साता वेदनी इन परिणामों से और असाता वेदनी इन परिणामों से। असाता वेदनी कर्म के कौन से परिणाम हैं जिससे मुझे और असाता बंधती है? एक तो असाता के उदय में वे सब परिणाम होते हैं और अगर उन परिणामों से प्रभावित हो जावे और नए परिणाम कर लेवे तो पुनः असाता बंधती। जैसे दुख है, कह रहे हैं जिसमें पीड़ा हो वो दुख कहलाता है। अब किसी ना किसी असाता के उदय से हुआ है लेकिन असाता के उदय में पीड़ा भई है, आप अपने परिणाम फिर से पीड़ाजनक करना चाहो तो करो, जरूरी नहीं है कि आप करो। ही पीड़ा होते हुए भी मैं शांति रख सकता हूं, उस पीड़ा को सहन करूं और अगर मैं पुनः उस पीड़ा को महसूस करता हूं, उस पीड़ा से दुखी होता हूं तो नए असाता को बांधूंगा, ये डेफिनेट हो गया। जितना जितना अपन दुख के समय पर दुखी होते हैं उतना नए दुख को बांधते हैं, ये समझने की चीज। अरे अभी तो हम वैसे ही दुखी हैं, अब उमें और हमाओ का बस है उमें, हमारा बस ये है कि हम दुखी ना हो। दुख तो हमारे ऊपर सैकड़ों है, कौन कौन नहीं है दुख, जा बताओ। संसार में कोई भी जीव ऐसा है जो अपने को कह दे कि सुखी है? कोई ना कोई प्रकार का दुख है, लेकिन दुख सब होने के बाद भी मैं दुखी हूं या नहीं हूं ये मेरे ऊपर निर्भर, बताइए। तो कह रहे हैं कि अगर हम दुख के उदय में दुखी होते हैं तो नए दुख का इंतजाम करते हैं और फिर क्या कह रहे हैं, शोक किसे कहते हैं, ये सब एक ही हैं, सब चट्टे वट्टे, क्या कहते हैं उसको, एक ही चट्टे वट्टे के हैं ये, दुख कहो, शोक कहो, आताप कहो, संताप कहो, सब एक, लेकिन थोड़ी थोड़े फर्क हैं। इसलिए मैं ये डायरी मंगवा ली कि बहुत बारीक फर्क है उनमें और आचार्यों ने जो वाणी कही है ज्यों की त्यों वो अपन जाने। अनुग्राहक संबंध विच्छेदे वैक्लव विशेषा शोका, जब कोई हमारा हितैषी व्यक्ति और हमसे अपने संबंध को तोड़ लेता है तब उस समय जो पीड़ा होती है उसे शोक कहते हैं, बताइए। ऐसी परिभाषा बनाई, पीड़ा अकेली होना दुख है लेकिन वो दुख किस निमित्त से हुआ है, तो कहते कोई हमारा हितैषी था और उससे हमारा, अपन को के मरे से नहीं रोते हैं, जा ख्याल रखियो। हाँ, हमारे इनसे काम सटत तो और अब नहीं है, सुमाओ काम ने सट है, अब इस है रोज, ये बहुत विचार करने की चीज है। हाँ, बहुत विचार करने की चीज है। हमारे दुख का कारण, इसलिए आचार्यों ने ऐसी परिभाषा बनाई, जो हमारा अनुग्रह करता था, हमारा हितैषी था, प्रियजन था, उसने हमसे संबंध विच्छेद कर लिया, तब हमें जो भीतर भीतर पीड़ा होती है, जो विकलता होती है कि अब क्या होगा मेरा, वह शोक कहलाता, इससे भी असाता वेदनी बंधती है। फिर कह रहे परिवाद आदि निमित्तात, और अब कोई ने अगर, वैसे कोई दुख नहीं था लेकिन किसी ने झूठा दोष लगा दिया, अब झूठा दोष लगाने पर भीतर भीतर जो संताप होता है उसे कहते हैं ताप, दुख शोक ताप। ताप अर्थात संताप। मैंने तो ऐसा किया नहीं लेकिन मेरे ऊपर ऐसा दोष लगाया जाए। जैसे सीता जी के ऊपर दोष लगा दिया तो सीता जी को कैसा लग रहा होगा, पर वे क्या विचार करती कि मेरे ही किसी किए हुए कर्म का उदय है। लेकिन पद्म पुराण जी में एक बात जरूर उन्होंने ऐसा कहा रामचंद्र जी के प्रति कि रामचंद्र जी तो ज्ञानी थे, मैंने तो अज्ञानतावश कर्म बांधे थे सो उनका फल भोगती हूं, लेकिन वे तो ज्ञानी थे, मुझे त्यागने से पहले विचार तो कर लेते, मुझे उनसे ऐसी आशा नहीं थी। पहले नंबर ये वाक्य निकलता है उनके मुंह से। महापुरुष हैं, महापुरुष खोटी भाषा नहीं बोलते, लेकिन बस सोच के बोली थी वे कि मैंने तो अज्ञानतावश अपने किसी उससे ये कर्म का फल बांधा है और मुझे भोगना है, लेकिन रामचंद्र जी तो ज्ञानवान थे, उन्होंने त्यागने से पहले क्यों नहीं विचार किया। तो जब कोई दोष लगा देता है तब जो भीतर भीतर बहुत संताप होता है उस संताप के चलते भी अपने को नया असाता का बंध होता, ये ध्यान रखना। होता है सबके जीवन में झूठे दोष क्या सच्ची दोष लगाने तक पे तो संताप होता है। जिसने कोई वाकई में अपराध किया है उसको भी अपन कह दो अपराध किया आपने तो वो भी उसको भी पीड़ा हो, और जिसने नहीं किया उस पे लगा दो अगर कि आपने ऐसा अपराध किया है तो उसको तो बहुत संकलेश होगा। कहती उस समय सावधान रहें, कोई अगर अपन से गदा कहे तो के कैसे का अपन गदा हो जाए। जा बताओ के ले सो के ले, कोई बात नहीं, ऐसा विचार आना चाहिए तो असाता से बच पाएंगे, नहीं तो 99% केसेस में अपन नहीं बच पाते हैं और झट से संताप कर लेते हैं और नए असाता को वहां। अब बताओ आप, अब इन सब पे विचार करना कि अपन अपने हाथ से उपद्रव कर रहे हैं कि कोई और कर रहा हो, कर्म बांधवे को उपद्रव अपने हाथ से कर रहे कि नहीं, असाता अपने हाथ से बांध रहे कि नहीं, और रोक आए बात से रहे हैं कि हमारे कर्म ही ऐसे हैं। तो भैया तुम्हारे कर्म है तो उसे मनो अब रो रो के तो न भोगो ना, और रोना पड़ेगा। हाँ ये चीज जो है ध्यान में रखने की, इतने ही सीखने की सूत्र जी के सूत्रों की, अपन जरा गौर से उनको समझें अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या प्रैक्टिकेबल है। और फिर कह रहे हैं आक्रंदन, बहुत अधिक दुख से पीड़ित होकर जब हम विलाप करते हैं और आंसू बहने लगते हैं तब वो कहलाता है आक्रंदन, वीपिंग जिसको कहते हैं, बुक्का फाड़ करके जब रोना जिसको कहते हैं, बहुत संक्लेश है असह्य हो गया है तब जो है आवाज निकलना। वैसे तो कहते हैं कि आक्रंदन बहुत ज्यादा संताप की स्थिति नहीं है, जो चुपचाप आंख भीग जाती है और आंसू गिर जाता है उसमें संताप बहुत है, और जिसमें मुंह से चिल्ला करके और रोने लगते हैं उसमें उतना नहीं है दुख, वो तो पजोक हुआ करत, कोई की मरे पे हो के घर जाके जोर जोर से रोते हैं, भले ही दुख हुए चाहे न हुए लेकिन ऐसा कर लेते हैं, कहते हैं इसलिए उसमें संभावना है। आक्रंदन में इंटेंसिटी कम हो सकती है, कई बार साइकोलॉजी वाले कहते हैं कि कोई दुख आए किसी पे तो उसको जबरदस्ती रुलाओ, रोएगा नहीं तो भीतर ऐसा बैठ जाएगा कि हो सकता है कि बेहोश और कोमा में चला जाए, सहन नहीं होगा अगर, तो रो उसको रुलाओ आक्रंदन। तो ऐसी स्थिति में भी हमारे कर्मों का बंध ही होता है। फिर कह रहे हैं बध, आयु इंद्री बल और प्राण इत्यादि जितने भी 10 प्राण हैं उसमें से किसी का भी घात करना वो सब बध में आएगा, संक्लेश पहुंचाते हैं वे सब और असाता का बंध करते हैं। दूसरे को संक्लेश पहुंचाना, ऐसी बात कह दी मर्म भेदी कि उसको संक्लेश पहुंचा, और कहने वाला तो स्वयं संक्लेश से ग्रसित है ही, तभी तो ऐसी संक्लेश प्रद बात कर रहा है। तो कह रहे हैं अकेले बध के मायने प्राण ले लेना अकेला नहीं है। हां आप क्या समझ रहे हो कि बध मतलब पूरी तरह से मारे दिया, नहीं, ये स्लो पॉइजनिंग है, किसी को टॉर्चर करना, किसी को कोई ऐसी कड़ी बात कह देना, किसी को हिराकत की नजर से देखना, ये क्या है? ये ढंग है बध करने का, और क्या नहीं। आप ऐसा नहीं सोचना कि जब कोई गर्दन ही पकड़ ले और मसक दे तो ही बध कहलाएगा। हाँ, गर्दन पकड़ने से तो ज्यादा जो है ऐसे देख लेना उसको कि बिल्कुल हालत खराब हो जाए उसकी। मर्म भेदी या वचन ऐसे कह देना या शरीर से ऐसा कोई एक्शन कर देना, हाँ यह भी एक बध का प्रकार है, बचना चाहिए। इससे हमारे स्वयं के असाता का बंध होता है। बध परिदेव, अब जो है परिदेवन तो बहुत अधिक संक्लेश की स्थिति में होता है। जब हम कोई अपना प्रिय बंधु हमसे बिछुड़ जाता है तब उसके गुणों का स्मरण करके कि ऐसे थे, और फिर रोते हैं और फिर स्मरण करते हैं और फिर रोते हैं, इस तरह घंटों जो है, और जो रुदन होता है उसको कहते हैं परिदेवन। इस तरह सूत्र जी की पूरी बातें हो गई। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेव, आत्म परोभय, स्वयं भी ये करना और दूसरे के में निमित्त बनना, दूसरे के दुख में, शोक में, आक्रंदन में, परिदेवन में, बध में निमित्त बनना, या स्वयं के भी, इन दोनों स्थितियों में चूंकि संक्लेश है इसलिए एक ही कर्म बंधेगा, विशेष रूप से असाता ही बंधेगी। असाता सब प्रकार से वेदनी कर्म है जो कि आखिरी तक रहता है। साता और असाता वेदनी कर्म, तीर्थंकर भगवान के भी साता और असाता वेदनी कर्म का उदय होता है, लेकिन वो वहां कार्यकारी नहीं होता, क्योंकि वेदनी कर्म तो मोहनी कर्म के साथ ही अपना फल दे पाता है, और जिसने मोहनी का अभाव कर दिया उसको साता असाता से वो पार हो जाता है। तो विचार करना कि जितना ज्यादा हमारा मोह होगा उतना हमें असाता होने वाली है। देख लो आप, अनुभव है, जिस चीज से जितना लगाव है उस चीज के होने और न होने पर दोनों स्थितियों में सुख और दुख दोनों ही होते हैं, और दोनों में ही संक्लेश है, विशुद्धि दोनों में नहीं है। वो ही हमारे कर्म बंध में कारण बनता। और एक सूत्र और है जो अपन ने कहा, साता वेदनी, अब साता के लिए भी देख लो, अगर अपन को ऐसा विचार भी करना चाहिए कि जब अपन को असाता आवे तो अपन को विचार आ जाए कि देखो अपन ने ऐसा किया होगा, तब तो अपने असाता है। और जब साता का उदय हो, सब अच्छे से चल रहा हो, सब अनुकूलताएं हो, तो भूल नहीं जाना चाहिए, तब भी विचार करना चाहिए कि देखो हमने पहले जीवन में ऐसा कुछ किया होगा उसकी वजह से, और हमें आज सब प्रकार की सुख सुविधा है, कोई बात की कमी नहीं है। ऐसा विचार करके और समता धारण करना, नहीं तो उस साता के उदय में फूल जाओगे तो भी, और नए असाता को ही बांधोगे। ऐसा विचार अपन को आ जाना चाहिए। भूत वृत्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग क्षांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। साता वेदनी कर्म इतनी कारणों से, इतने परिणामों से बंधता है। भूत वृत्यनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव, और त्यागी व्रती के प्रति और अधिक अनुकंपा का भाव। देखो, अनुकंपा किसे कहते? दूसरे के दुख से अपना हृदय दहल जाना, कंपायमान हो जाना, इसको कहते अनुकंपा। और दूसरी परिभाषा, दूसरे को दुख ही ना हो ऐसा विचार करना, इसका नाम भी अनुकंपा। सो प्राणी मात्र के प्रति कैसा विचार करना कि इनको, किसी को, संसार के सब जीव सुखी रहें, किसी को दुख ना हो, और दुख दिखाई पड़ जाए तो अपने को भी वैसा ही दुख महसूस होना कि देखो इतना दुख है इनको। अपन के जो व्यक्ति अपने होते हैं उनके दुखों देख के अपन भी दुखी हो जाते, मगर यही सबके प्रति हो जावे अगर, तो चींटी के प्रति भी हो जाए। जब पांव चींटी पे पड़ जावे तो ऐसा लगे जैसे कि मेरे ही ऊपर मैंने पांव धर दिया है, इतनी पीड़ा, वो कहलाएगी भूत वृत्यनुकंपा। प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, और जो त्यागी व्रति हैं उनके प्रति विशेष रूप से अनुकंपा का भाव, दया का भाव। नहीं कह रहे ध्यान रखना, दया नहीं करना त्यागी व्रति पे, त्यागी व्रति पे तो श्रद्धा करना। हाँ महाराज जी बहुत कमजोर से हो गए हैं, अच्छो भोजन करवा देते अपन, ऐसी दया नहीं करना। नहीं तो आपके कर्म ही का बंद होने वाला है, खोटे कर्म का। श्रद्धा से वो महाराज भी याचना नहीं करेंगे, कितना भी शरीर रुग्ण हो जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए, कितने भी दिन का उपवास क्यों ना हो जाए, उठने बैठने की सामर्थ्य ना हो, लेकिन याचना चेहरे पर नहीं आएगी। स्वावलंबन है, वहां पर मुखापेक्षता नहीं है, तो ही कर्म कटेंगे। ऐसे ही श्रावक भी व्रती जनों के प्रति दया नहीं करेगा, अनुकंपा, उनके दुख से स्वयं दुखी होकर उनके दुख को दूर करने का उपाय करने, ये भैया वृत्ति कहलाए, ये तप कहलाए, इससे साता बनेगी। ऐसा जो है अपने को बहुत विचार करना चाहिए। अब देखिएगा, फिर कहते दान, चारों प्रकार के दान देना, ज्ञान दान, औषधि दान। ज्ञान दान की जगह उपकरण ले लो, आचार्य संबंध पत्र स्वामी ने उपकरण दान दिया। उपकरण में क्या आ जाएगा, पेन भी दे दिया, पीछी भी दे दी, कमंडलू भी दे दिया, ज्ञान के शास्त्र भी दे दिए। ज्ञान दान में तो अकेला शास्त्र ही है, और इसमें तो पीछी कमंडलू भी श्रावक देता है मुनि महाराज के लिए, वह भी उसका उपकरण दान कहलाएगा। वे उपकरण जो मोक्ष मार्ग में सहयोगी है, उपकार करने वाले हैं, उन सबको देना, मोक्ष मार्गी को देना, आहार इत्यादि देना, आवास दान या कि अभय दान देना, और कौन सा रह गया, औषधि दान देना। इस तरह से ये दान है। औषधि दान की एक दिन घटना सुनाई थी, उस दिन हम भूल गए कहना, श्री कृष्ण जी ने कहते हैं कि उसी औषधि दान के वजह से और तीर्थंकर प्रकृति बांधी, ऐसा आता है। और इतने ही नहीं, हमारे घरे आहार हुई तो औषधि दे, ऐसा नहीं, एक महीने तक महाराज की औषधि बना के और सब घरों में जाके दियाते थे कि जी अपने ते धल्लो, जाने कहियो कि हमने दई, हमारी आए महाराज और देना महाराज को। हाँ, अबे तो अपन तन नक्सो कचु करत है, सो चार दिनों को बताओ कि हमने जो करो या सब हमने दई थी, हम जा जब जब महाराज की दवाई लेके जा रहे हम, तुम्हें कब आजमा लगू अलग हो, हम ले जान दो दवाई ले आए हम, देखो तो। अब इसमें बंधेगा क्या, इसमें तो साता बंधेगी, साताने बंधेगी। हाँ, औषधि दान, लेकिन कैसे पता ही नहीं लगने दिया कि मैंने किया है, आप ही दो, आप ही दे दो। इस तरह से चार प्रकार के दान देने से साता बंधती है। तो भूत वृत्यनुकंपा दान, सराग संयम, सराग संयम में लिखा है कि संप्राय निवारण प्रबणः क्षीण आशयः सरागः। अब क्या करें, कषाय का अभाव पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम जो बुरी कषाय है, अप्रशस्त है, उसको छोड़ करके और धर्मानुराग पूर्वक संयम का पालन करना, ये सराग संयम है। अबे हमारा कौन सा संयम है बता सकते हो, सराग संयम है, क्यों, वात्सल्य है, धर्म वात्सल्य की वजह से, और आकर के बैठ गए, चार बातें अपन कर रहे, आपके अंदर भी हमारे अंदर भी अभी कौन सा परिणाम चल रहा, अनुराग है, धर्मानुराग की वजह से बैठे हुए हैं। और जो संयमी में है तो उसका सराग संयम कहलाएगा, और जो देश संयमी है उनका वो सब सराग कहलाएगा। जितनी भी शुभ क्रियाएं अपन करते हैं वे सब सराग अवस्था की हैं, संयम है लेकिन शुभ क्रियाएं कर रहे हैं। वैसे संयमी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जी करना चाहिए, जो संयमी है उसको हाथ पे हाथ धर के आत्मा का विचार करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे, कितनी देर करेंगे, 48 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो बाहर आओ, बाहर आओ तो अशुभ क्रिया नहीं करना, शुभ क्रिया करना, इससे क्या होगा, साता बंधेगी। तो साता के लिए एक उपाय ये भी है कि हमेशा शुभ कार्यों में लगे रहना, अशुभ कार्य का अवसर ही ना आवे, करने भी पड़े तो बेमन से कर दो, क्या हो गई, अब जो करने पड़ रहा हो कर्तव्य है, इसे रोटी बनाई हमने, सब जने जी ले, में बस खत्म, हमें कोई इसमें ज्यादा मोह नहीं है। घर गृहस्थी के कामों को भी अपन कर्तव्य मान करके कर सकते हैं, कोई उसमें इंडल्जिंग की जरूरत नहीं है कि हम बहुत लिप्त हो करके करें, जल्दी से ये सब बड़े हो जावें और अपनों काम संभाल लेवें, और हमें तो घर छोड़ के जाने का मन है, सो 55-60 साल में तो हम छोड़ ही देंगे, ऐसा 25 साल से भावना भा रहा है कोई, अगर 55 साल का हो गया तो मानिएगा उसने साता ज्यादा बांधी, असाता कम, जबकि उसने कारी हो सकता है कि बिल्कुल वे सब करे हों, लेकिन परिणाम उसके कैसे थे, करना पड़ रहा है। मैंने गृहस्थी बसाई है सो अपना कर्तव्य करूं और फिर जल्दी से जे समझदार हो जाए सो इनको दे करके, और जे भी अगर घर छोड़ दे तो बहुत अच्छो, सब छोड़ दे में कोई हर्जा नहीं, हम तो छोड़ ही देंगे घर गृहस्थी का, ऐसा विचार अगर हो तो वो सब सराग संयम हमारे साता के बंध का कारण है। योगा और मन वचन काय की शुभ क्रिया, विचार भी करना तो अच्छा करना, क्रिया करना तो भली करना, बोलना तो भला बोलना, इससे भी साता बंधती है। और कह रहे निर्बद्ध क्रिया विशेष अनुष्ठानम, जिससे पाप ने बंधे ऐसी क्रिया करने से साता का बंध होता। शांति एक महत्वपूर्ण है वो आखिरी का, धर्म प्रणिधानात क्रोधादि निवृत्ति शांति, वास्तव में क्रोध उत्पन्न ना हो। जब अपन अपने भीतर धर्म आ जाता है तब क्रोध उत्पन्न नहीं होता, जिन क्षणों में अपन के अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होता वे अपने धर्म के क्षण है समझ, और जिन क्षणों में क्रोध उत्पन्न हो जाता तो अपन धर्म से विचलित हो गए। तो कह रहे कि ज्यादा से ज्यादा अवसर पर और धर्ममय वातावरण अपने भीतर बना रहे उसी का नाम शांति है। जैसे हमने कहा था कि चार बातें कड़ी सुन करके भी भीतर पानी हिलो तक नहीं है, कछु नहीं हुआ, ठीक ये तैसे सुनी तैसे निकाल कह लो भैया कछु भी, वो शांति है। और फिर आखिरी कह रहे शौचम, लोभ प्रकारा नाम उपरमा शौचम, जितने प्रकार का लोभ है वो सब छोड़ देना ये कहलाता शौच। अब अपन ये सोचते हैं कि इतनो सामान जोड़ के धल्लू सुसाता रहे, हमें जिया समझाना इसमें और कुछ नहीं, अपन क्या सोचते लोभ करते और साता के लिए अपन सोचते हैं कि साता कैसे आएगी, जब चार और चालीस चीजें अपने पास हुई है सुसाता है। और यहां क्या कह रहे कि जितना त्याग होगा, जितना लोभ कम होगा, जितनी निर्लोभ प्रवृत्ति होगी उतना साता बंधने वाला। देखो तो उल्टा हिसाब नहीं लग रहा, अपन सोचते थे कि अच्छो मकान हुई है तो साता रहे, अच्छी कपड़ा पैर भी हुई है तो साता, अच्छी भोजनों की व्यवस्था हो तो साता, और जी उल्टा ही कह रहा है इसमें कि जितना लोभ कम हो उतनी साता, वर्तमान में भी और आगे भी। देख लो आप, जिसको जितना कम लोभ है उसको वर्तमान में भी शांति है सुख है, और आगे के लिए भी वो सुख ही बांध रहा है, साता ही बांध रहा है। बस इतनी सी बात इसमें महत्वपूर्ण थी, और बाकी सब चीजें भी हैं जिससे जितना इसमें हो सके उतना करना चाहिए। एक उदाहरण दे देते हम सो जल्दी समझ में बैठ जाएगी बात, इतनी तो अपन ने सुनी, इसमें से थोड़ी बहुत तो रह जाएगी, पूरी तो नहीं रह पाएगी है? हमारे ध्यान में नहीं रह पाएगी जितनी हमने कहीं को, हाँ संभव है इतना तो अपना ज्ञान कम है, तुरंत के तुरंत विस्मरण हो जाता है, पर फिर भी जितनी अपने भीतर रहे इतनी तो रहेगी कि अपने परिणाम बिगड़न लगे सो तैसे हट जाओ। भैया बिगाड़ने नहीं है, बिगाड़ने के मौका बहुत आएंगे, अपन को संभाल लेना, बिगड़ भी गए तो जल्दी संभाल लेना। अबे हो सकता था कि सुबह की बिगड़ी संध्या तक ने समृद्धि, अब इतनी सुने के बाद सुबह की बिगड़ी घंटा दो घंटा में समर जावे, इतने ही कर लो, हाँ इतने में भी अपना काम हो जाएगा, कोई बड़ी वो बात नहीं है। लेकिन निर्लोभ प्रवृत्ति की बात कर रहे कि एक फकीर आदमी था, उसने अपनी झोपड़ी के चारों तरफ एक बढ़िया बगीचा लगा लिया। अब उसका बगीचा बहुत सुंदर था, सब चाहते थे कि जो बगीचा फकीर को का करने हमें दे दे। तो अब उस फकीर ने भी एक दिन जब उसके मन में आया कि अरे अब बहुत लोग कहते कि हमें दे देवे तो अब दे ही देंगे अपन, तो उसने एक बोर्ड बनवाया और उस बोर्ड पे क्या लिखा कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा उससे मैं ये बगीचा दे दूंगा। अब लो अब उनके जो शिष्य थे उनने खूब प्रचार किया उसका कि जो पूर्ण संतुष्ट होगा बगीचा उसको दे दिया। कई जने आए कह ले हम पूर्ण संतुष्ट हैं, हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है, कोई को नहीं दिया उसने। अब राजा ने सोचा कि देखो कोई ना कोई के तो कछु न कछु अभाव है ही, पूर्ण संतुष्ट को हो कैसे सकत हमारे राज्य में, लेकिन हम तो पूर्ण संतुष्ट हैं। एक दिन राजा पहुंच गया फकीर के पास और कहता कि मैं तो सब प्रकार से संपन्न हूं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण संतुष्ट मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, मुझे तो दे। तो मालूम उसने क्या जवाब दिया कि जो पूर्ण संतुष्ट होगा वो यहां मेरे पास मांगने नहीं आएगा,
जो पूर्ण संतुष्ट है उससे देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए बोर्ड रखा रखा है। जब तक कोई यहां मुझसे मांगने आएगा तब तक मैं समझ जाऊंगा कि अभी ये संतुष्ट नहीं है। हमारा असंतोष किस बात में प्रकट होता, जितनी हमारी आकांक्षा है उतना हमारा असंतोष प्रकट होता है, जितना हमारा लोभ है उतना हमारा संतोष, और आगे के लिए भी हमें असाता ही बनती है। साता अगर बांधनी है तो भैया जितना बने उतना संतोष पूर्वक और उतना निर्लोभ होकर के त्याग की प्रवृत्ति भैया ले लो, आप ले लो, आपके काम का आप ले। ऐसा भाव भले ही न दे पाओ, देखो नहीं दे पा रहे अपने पास इतनो नहीं है कि दे दे, मतलब भाव तो बनाओ कि ले लो भैया हमें क्या करना। ये निर्लोभ प्रवृत्ति कहलाएगी, इससे साता बनता है। अपन ने बांधे हैं साता असाता सब बांधे हैं, भूल जाते अपन की कैसे बांधे होंगे, इसलिए याद कर लिया कि असाता ऐसे बांधी होगी अपन ने अपने परिणामों से और साता ऐसे बांधती है इन परिणामों से। अब अपन को क्या करना, साता कम साता अधिक बंधे और असाता, क्योंकि असाता के उदय में धर्म ध्यान में दिक्कत होती, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता हो, साता का थोड़ा उदय हो तो धर्म ध्यान इत्यादि के निमित्त साधन तो कम से कम मिल ही जाते, इसलिए साता और असाता में से जब चुनना पड़े तो साता ही चुनना चाहिए। वैसे तो कर्म सब कर्म ही है, अपन को तो कर्म से पार होने के लिए पुरुषार्थ करना है, पर जब भले बुरे कर्म में से चुनना पड़े तो भले कर्म चुनना। इस तरह अपन ने ये बात समझी, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम हमेशा पुरुषार्थ करते रहें, इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्या सागर।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, तो लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां, शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्या काम नाश देखो समुद्रव्य जान वेखो बंद वेद पान वेखो सो पर विचान वेखो परम प्रमाणी है, रहा कहा वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो वाणी है वाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख जैन धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे
महाराज के पावन चरणों में भोग विक्रम पूजे प्राप्त महाराज के पावन चरणों में अलग अलग प्राप्त है अलग अलग।